मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, आज 27 जनवरी 2017 है, दिन है शुक्रवार, और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस था और मुझे यकीन है कि आपने गणतंत्र दिवस को न केवल महज एक छुट्टी के दिन की तरह मनाया होगा बल्कि एक भावनात्मक लगाव के साथ इस दिन का इस्तेमाल किया होगा। भावनात्मक लगाव की बात मैं इसलिए कह रहा हूं मित्रों कि 26 जनवरी 1950 का ही दिन वह दिन है जिसके लिए हमने 90 सालों तक, हमारे पूर्वजों ने 90 सालों तक अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। ये 90 साल में 1857-58 से जोड़ रहा हूं, 1947 में हम आजाद हुए। मित्रों, कल हमारे भी कॉलोनी में स्वाभाविक रूप से झंडा वंदन हुआ, उसमें मैं भी गया था। हमारे यहां, हमारी ही कॉलोनी में हाई कोर्ट के एक जस्टिस रहते हैं, उनका नाम भी मेरा ही है और सरनेम भी मेरा ही है, उनका नाम भी न्यायमूर्ति विजय अग्रवाल है। भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि मेरे नाम के साथ न्यायमूर्ति नहीं है, वो भी थे और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात अपने उद्बोधन में कही। मैं उसी संदर्भ में आज के अपने लाइफ मैनेजमेंट को आप लोगों के सामने पेश करना चाहूंगा। मित्रों, उन्होंने बताया कि उनके यहां एक परिचित आए थे, रुके थे यही भोपाल में, तो उनके साथ उनका बेटा भी था, एनआरआई थे वो, नॉन रेजिडेंट इंडियन। तो उनके साथ जो उनका छोटा सा बेटा था, छोटा सा, करीब 5-6 साल का लड़का होगा, उसका जन्म अमेरिका में ही हुआ था और वह भारत आया और जब इनके यहां रुका तो इन्होंने देखा कि सुबह सुबह उसने अपने बैग से एक फ्लैग निकाला जो अमेरिकन फ्लैग था और उस फ्लैग को उसने अपने टेबल पर रख दिया और बकायदे उसको सैल्यूट किया और फ्लैग को अपने टेबल पर लगा रहने दिया। तो जब इनकी बातचीत होती रही उस बच्चे से, जब इन्होंने बात की जस्टिस साहब ने, तो उस बच्चे ने कहा कि यस, आई एम अमेरिकन एंड आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अमेरिकन, मतलब मैं अमेरिकन हूं और मैं इस बात पर मुझे बड़ा गर्व है कि मैं अमेरिकन हूं, आई लव माय कंट्री, इस तरह की बातें वो करने लगा। इसके जरिए वो ये बता रहे थे कि किस तरीके से वहां बचपन से ही लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना पैदा करने की कोशिश की जाती है। मित्रों, एक छोटी सी घटना है जो मुझे 26 जनवरी कह लीजिए, हम सन को अब क्यों ले, और 15 अगस्त के दिन स्वाभाविक रूप से जिसे मैं महसूस करता हूं और आप लोग भी महसूस करते होंगे क्योंकि हम लोग तो उस समय गांव में पढ़ते थे और 15 अगस्त 26 जनवरी बहुत बड़ा उत्सव का दिन हुआ करता था, भले ही वो छोटा सा गांव ही क्यों ना होता था, क्योंकि हम सब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे लाइन लगा करके पूरे गांव में प्रभात फेरी में निकलते थे। लगभग समझिए कि 1-1.5 घंटे तक गाने गाते हुए सारे जहां से हिंदुस्तान और अलग अलग किस्म के गाने गाते हुए हाथ में तिरंगा झंडा लेकर और गांव की में पूरे गांव में घुमा करते थे। तो हो सकता है कि वो सब बीज के रूप में हमारा, हम लोगों के अंदर मौजूद हों और आप लोगों के अंदर वो भी बीज के रूप में बच्चों के अंदर मौजूद होंगे, आगे जाकर के पल्लवित पुष्पित होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मित्रों, मुझे लगा कि आज फिर मुझे अपने लाइफ मैनेजमेंट में इसी संदर्भ में कुछ अलग तरीके से बात करनी चाहिए और मेरे दिमाग में एक आइडिया क्लिक किया, वो बात मैंने भी कल उस प्रोग्राम में रखी थी और अब उसे मैं अपने एक बड़े मंच पर आप लोगों के सामने एक अलग रूप में रख रहा हूं। मित्रों, 15 अगस्त 1947 को तो हम आजाद हुए, राइट, आजादी मिल गई, हम स्वतंत्र हो गए, शब्द पर जरा सा ध्यान दीजिएगा, हम स्वतंत्र हो गए। 26 जनवरी 1950 को हमने अपना कानून लागू कर दिया, संविधान का मतलब यही हुआ कि हमने अपना कानून लागू कर दिया, कानून लागू कर दिया, हमने अपना संविधान बना लिया, संविधान का मतलब ही है हमने अपना कानून खुद बनाया। अब यहां एक सोचने की बात यह है कि फिर हम आजाद किससे हुए, तो उत्तर मिलेगा कि हम आजाद हुए बेसिकली ब्रिटिश कानून से, इसी को हम आजादी कह रहे हैं ना, यानी कि हम आजादी इस बात की नहीं चाह रहे थे कि हमारे पास कोई कानून ना हो, हम आजादी इस बात के लिए चाह रहे थे कि हमारे पास अपना कानून हो, दैट्स ऑल। और इसके बाद लगभग 2.5 साल के बाद हमने अपना कानून लागू कर दिया 26 जनवरी 1950 को, यानी कि अब हम फिर से परतंत्र हो गए, अगर हम कहें कि कानून में बंधना परतंत्रता है तो ठीक है, अब परतंत्र हो गए, लेकिन ये परतंत्र नहीं है, ये बेसिकली स्वतंत्रता ही है, क्योंकि उस समय हम दूसरे के तंत्र में रह रहे थे, दूसरे के सिस्टम में रह रहे थे, और अब हम स्व के सिस्टम में रह रहे हैं। स्व का तंत्र, तंत्र का मतलब है सिस्टम, हमने अपना सिस्टम बना लिया। इसका मतलब यह हुआ फ्रेंड्स, थोड़े सा भी अगर गहराई से बात करें तो स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ? स्वतंत्रता का मतलब ही हुआ कि आपको अपना सिस्टम बनाना ही पड़ेगा, कोई भी स्वतंत्रता सिस्टम लेस नहीं हो सकती। और सिस्टम क्या है? सिस्टम का मतलब है कानून, सिस्टम का मतलब है नैतिकता, सिस्टम का मतलब है धर्म, सिस्टम का, अब इसमें आप जोड़ते चले जाइए जो जो भी चीजें, जो भी आपके सिस्टम को बनाने में मदद कर रहे हैं वो सारे के सारे सिस्टम के हिस्से हैं, राइट फ्रेंड्स। अब आप देखिए कि बड़ी विचित्र सी चीज आपको यहां दिखाई देगी कि अब हमने जो अपना संविधान बनाया, देखिए हम सबके पास अपने अपने धर्म ग्रंथ हो सकते हैं, हैं ही, किसी के पास रामचरितमानस है, किसी के पास गीता है, किसी के पास बाइबल है, किसी के पास कुरान है, किसी के पास गुरु ग्रंथ साहब है, सबके पास अपने अपने धर्म ग्रंथ हैं, लेकिन हम सबका एक और धर्म ग्रंथ है जिसे आप राष्ट्रीय ग्रंथ कह सकते हैं, राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ कह सकते हैं, नागरिक ग्रंथ कह सकते हैं, जो भी उसे कहना चाहें, वह हमारा संविधान। ये संविधान हम सबका एक नागरिक ग्रंथ है, वहां हम सब एक जैसे ही हैं और उसी के तहत हमारे सब रूल्स रेगुलेशंस कानून बनते हैं। तो मित्रों, मुझे कभी कभी ये लगता है क्या इस जो हमारे संविधान में जो कुछ भी बातें कही गई हैं वो भी उसी तरह से धर्म का हिस्सा नहीं है जिस तरीके से किसी समय मनुस्मृति में बातें कही गई थी और उसको धर्म मानकर चला गया था। देखिए, चलिए हम बाइबल को अलग ले सकते हैं, गीता को अलग ले सकते हैं, कुरान को अलग ले सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने भी ये लिखे हैं, जिन्होंने भी ये ज्ञान दिया है वो राजसत्ता से जुड़े हुए नहीं थे, वो सब आध्यात्मिक, बहुत पहुंचे हुए आध्यात्मिक महापुरुष थे, महाज्ञानी थे, पैगंबर थे, संदेशवाहक थे, ईश्वर थे, जो भी आप नाम देना चाहें, है ना, वो एक अलग क्षेत्र के थे। लेकिन मनु तो राजा ही थे ना, तो मनु ने अपनी स्मृति बना दी, यानी कि मनु ने अपना संविधान बना दिया। यही तो हुआ ना कि मेरे राज्य का संचालन कैसे होगा और आगे भी कैसा होता रहेगा, जिनको बदलना होगा, संविधान संशोधन करना होगा, संविधान संशोधन कर लेंगे, नहीं तो आप इसको मानते रहिए। उस मनुस्मृति को बाद में एक तरीके से धर्म ग्रंथ की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा, उस समय भी, जबकि बेसिकली वो राज ग्रंथ था। मित्रों, मैं यहां डिस्प्यूट नहीं रख रहा हूं कि राज ग्रंथ है या धर्म ग्रंथ है, मैं केवल ये कह रहा हूं कि राज ग्रंथ भी तो धर्म ग्रंथ बन सकता है, नंबर एक। नंबर दो, कि हम राज ग्रंथ को ही धर्म ग्रंथ क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि जो राज ग्रंथ है वह पूरे के पूरे राज्य की व्यवस्था करता है, और जो धर्म ग्रंथ है, अब अगर हम अंतर लें तो वह व्यक्ति की व्यवस्था करता है, इतना ही तो फर्क है। और सीधी सी बात है कि अगर राज्य और व्यक्ति में टकराव होगा, अराजकता फैलेगी, राज्य को व्यक्ति के अनुकूल बनना पड़ेगा और व्यक्ति को राज्य के अनुकूल बनना पड़ेगा, और यही तो स्वतंत्रता है, यही तो स्वतंत्रता है। जब हम परतंत्र थे अंग्रेजों के जमाने में तो हमारी जो व्यवस्था थी वह उनके अनुकूल नहीं थी, या उनकी व्यवस्था हमारे अनुकूल नहीं थी, तो हम चाह रहे थे कि नहीं, हम अपनी व्यवस्था खुद बनाएंगे, इसी की तो लड़ाई हो रही थी ना। और हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए, वो लोग हमें छोड़ करके चले गए, छोड़ के क्या चले गए, हमने उनको निकाला, और इसके बाद फिर हमने अपनी व्यवस्था बनाने में 2.5 साल ले लिए, और 26 जनवरी 1950 को हमने अपनी व्यवस्था लागू कर दी। तो अब आप इसको सोच करके देखिए मित्रों, मैं जो स्पेशली जो दूसरी बात कहना चाह रहा हूं कि आपको क्या धर्म और संविधान में कोई टकराव दिखाई दे रहा है? अगर आप इस ब्रॉडर तरीके से सोचेंगे तब, संकीर्णता के साथ सोचने पर तो फिर बहुत टकराव आपको दिखाई दे सकते हैं, कोई टकराव दिखाई नहीं देगा। फिर आप देखिए कि हमारी जो दैनिक जीवन में है, जिसके लिए हम मर्यादा शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्या संविधान भी मर्यादा नहीं है? मर्यादा का मतलब क्या हुआ? मर्यादा का मतलब है कि एक तट बनाए जा रहे हैं, एक जब बाढ़ का पानी होता है वो फैल करके विनाश कर देता है, लेकिन उसी पानी को अगर मर्यादित कर दिया जाए, जिसे हम लिंक नहर जोड़ योजना कह रहे हैं, तो उसके दोनों तरफ आप तट खड़े कर देते हैं, और पानी बहुत मर्यादित होकर के उन तटों के बीच में बहने लगता है, और जब कभी उन तटों को तोड़ करके वो पानी बाहर निकलता है, उस मर्यादा को नष्ट करता है, तो बाढ़ आ जाती है जिसे कोई पसंद नहीं करता। तो क्या एक नागरिक के रूप में हम अपने संविधान को मर्यादित करने वाला ही एक ग्रंथ नहीं मान सकते, कि जो हमारे जीवन को मर्यादित करता है, हमारे विचारों को मर्यादित करता है, हमारे आचरण को मर्यादित करता है, उसकी सारी चीजें वही तो हैं, चाहे वो हमारे मूल अधिकार ही क्यों न हो, लेकिन मूल अधिकार भी तो हमारे जीवन को मर्यादित करते ही हैं, कि हम मुझे दूसरे के मूल अधिकारों का भी उतना ही ध्यान रखना है, उसमें कर्तव्य भी है, राज्य के लिए पूरी की पूरी मर्यादाएं हैं कि आप किस तरह के कानून बनाएंगे और इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। तो अगर आप थोड़ा सा इनलार्ज करके देखेंगे, थोड़ा सा उस चीज को फैला कर देखेंगे, व्यापकता के साथ देखेंगे, तो आप देखेंगे कि संविधान बेसिकली हमारे जीवन का केंद्र बन जाएगा, सारी चीजें वहां मौजूद हैं। तो मित्रों, अगर ऐसा है तो आप कह सकते हैं कि जो संविधान है ये हमारा राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ है, अगर आप कहना चाहें तो कह सकते हैं, लेकिन अब धर्म का प्रयोग चूंकि बड़े एक सीमित एरिया में होने लगा है, एक पंथ के रूप में भी होने लगा है, तो अब वो शब्द अपना अर्थ सीमित कर चुका है, या कह लीजिए बदल चुका है, और ऐसा केवल धर्म शब्द के साथ ही नहीं हुआ है, हर शब्द के साथ हुआ है, बहुत से शब्दों के साथ हुआ है, तो हम उस उन चक्करों में तो नहीं पड़ते, उस विवाद में। लेकिन मुझे लगता है मित्रों कि एक बात तो एक शिक्षित नागरिक होने के नाते, अगर हम शिक्षित नहीं भी है तो इस देश का नागरिक होने के नाते हमें अपने मन में बसा लेनी चाहिए, और वो ये है कि संविधान सर्वोपरि है और उसका पालन करना हमारा धर्म है, दैट्स ऑल। और जो धर्म का पालन करता है वो अभय होता है, उसको किसी तरह का कोई भय नहीं होता, यानी कि जो रूल्स रेगुलेशन कानून मर्यादाओं का पालन कर रहा है उसे डर क्यों लगेगा। अगर मैंने कानून इनकम टैक्स लॉ का पालन किया है तो मेरे पास काला धन है ही नहीं, तो फिर कोई भी विमुद्रीकरण आ जाए मुझे डर क्यों लगेगा, नहीं लगेगा, मेरे नींद में कोई खलल होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने मर्यादाओं का पालन किया है, मैंने धर्म का पालन किया है, इसी को आप कह लीजिए कि मैंने कानून का पालन किया है। मित्रों, अगर मैं अपने शरीर से संबंधित धर्म का पालन करता हूं कि मुझे क्या खाना चाहिए, कितने घंटे सोना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, मेरी जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए, तो मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा। मगर कानून का पालन करता हूं, विधि विधान का पालन करता हूं, तो मेरा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। अगर मैं प्रकृति के नियम का पालन करता हूं, मैं सामाजिक मानवता के नियमों का पालन करता हूं, तो मेरी आत्मा स्वच्छ रहेगी। मुझे लगता है कि आध्यात्मिकता का रास्ता क्या कोई दूसरा है इसके सिवाय, मुझे नहीं मालूम दोस्तों, मुझे तो यही दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, कुछ बातें मैंने आज इस गणतंत्र दिवस के माध्यम से आप लोगों के सामने रखी है। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस पर अपने अपने ढंग से विचार करें, और विचार करने के बाद अपने अपने निष्कर्ष निकाल करके उस पर आचरण करें। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज के लाइफ मैनेजमेंट को मैं अब यहीं समाप्त करूंगा, और साथ ही एक सूचना भी है कि आज शुक्रवार है, बट नेचुरली कल शनिवार संडे होने के कारण मैं आप लोगों से बात करने से वंचित हो जाऊंगा, इसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन सोमवार को हम फिर एक नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे और बातचीत करेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं, नमस्कार।